सपने उ प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे भगवान, संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं, बिना किसी हेतु उपकार करने वाला दूसरा कोई नहीं, दो ही है, एक तो आप और एक आपके भक्त। यदि महात्मा पुरुष भी औरों की तरह सोचने लग जाए कि इसमें हमारा क्या लाभ है, हम तो हमारा कल्याण कर लो, बहती गंगा है नहा लो, अपना ही अपना भजन कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, भगवान से मांग लो और कल्याण कर लो, अब दूसरों के कल्याण से हमें क्या मतलब, तो फिर बेचारे कलयुगी जीवों का क्या होगा, क्योंकि वे तो भगवान की तरफ लगते नहीं, और जो लगने वाले हैं वो अपना ही कल्याण करके रह जाते हैं, तो दूसरों का कल्याण कैसे होगा। महात्मा लोग तो सबके लाभ को अपना लाभ मानते हैं, और जो सबके लाभ को अपना लाभ मानता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई यूं ही कह दे चलता फिरता कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो भगवान ऐसे राजी नहीं होते हैं। गहराई से विचार करो, भगवान के भक्त तो मुक्ति को मन में स्थान देते ही नहीं है, उनको मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती और न इसकी चिंता ही रहती है। एक दृष्टांत देते हैं, एक धनी आदमी बड़ा दयालु था, बड़ा दानी था, वो सदाबत बांटता था, जो भी गरीब आए, अनाथ आए, भिक्षुक आए, उन्हें आराम से बड़े प्रेम से भोजन परोसता था। उसके पास में उसका सेवक खड़ा था, तो उस धनिक ने कहा उसकी ओर देख करके कि जाओ, तुम जाओ भोजन कर लो। वो सुनकर सेवक ने कहा कि हे स्वामिन, मैं सबके भोजन करने के बाद भोजन करूंगा, ये सेवा आप मुझे दे दीजिए और आप भोजन के लिए जाइए, मैं इन्हें परोस दूंगा। इन्हें पेट भरते देख देख कर मुझे बड़ा हर्ष होता है। कैसा उत्तम भाव है, वह सोचता है कि स्वामी को अवसर दे दूं तो वे भोजन करने आए और मैं इसी बीच में इन्हें परोस कर सेवा करूं और प्रसन्न हो जाऊं। तो स्वामी से प्रार्थना करता है कि आपको बहुत देर हो गई, आप थक गए हैं, आप भोजन कीजिए, मैं परोसता हूं। तो उसको कितना आनंद आता है परोसने में, वो भोजन में नहीं आता। उसके स्वामी बदले में जो कुछ भी कहते हैं वो काटता ही रहता है और सदा व्रत बांटने के लिए अपनी इच्छा रखता ही रखता है। इसी प्रकार महात्मा पूरे विश्व की मुक्ति चाहते हैं, वे भगवान के मुक्ति देने पर भी लेते नहीं है। भगवान की बात को हटाकर यही कहते हैं कि सारे संसार का कल्याण करें फिर हमारा करें। मांगते भी यही बात है कि जहां घोर नरक है, जहां जीव छटपटा रहे हैं, वहां हमको भेज दीजिए, वहां जाकर आपके नाम का प्रचार करेंगे, गुणों का प्रचार करेंगे, जीवों को शांति मिलेगी, वे जीव मुक्त हो जाएंगे और हम नरक को भी बैकुंठ बना देंगे। वह महात्मा सोचता है कि जिस प्रकार मैं दुखी था, बेचारे इसी प्रकार सब दुखी हो रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, इस अवस्था में इनको छोड़कर मैं स्वर्ग में जाऊं या मुक्ति को प्राप्त हूं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। जब राजा युधिष्ठिर को एक काल्पनिक नरक दिखाया तो युधिष्ठिर नरक के दुखित जीवों को देखते हुए गमन कर रहे हैं, तो नरक के जीव प्रार्थना करे, राजन हमें आपके यहाँ ठहरने से बड़ा सुख मिलता है, आपके शरीर से लगी हुई हवा हमारे शरीर को सुख देती है, हमारे सारे दुखों को मिटाती है, हम लोग बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, आप थोड़ी देर और ठहरिए। जब नरक के प्राणी इस प्रकार के वचन बोल रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने पार्षदों से कहा कि आप लोग जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये नरक है, यहां आपके नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। जब मेरे हवा से दूसरे को शांति मिलती है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब युधिष्ठिर महाराज इस बात के लिए अड़ गए तो सारा दृश्य ही बदल गया। वहां इंद्र प्रकट हो गए। युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, महाराज ये तो केवल काल्पनिक नरक था, केवल यूं ही बताया गया था। देखो ये तो स्वर्ग है, नरक नहीं है। अर्जुन तो बैकुंठ में भगवान के पास है, ये देखो भगवान के पास, ये देखो द्रौपदी लक्ष्मी जी के स्थान पर बैठी है। क्या द्रौपदी अर्जुन नरक में पड़ सकते हैं? कभी नहीं। ये तो युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी कि देखें ये अपने लिए कोई स्वर्ग की कामना करते हैं या नहीं, या दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं कि नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग नहीं चाहा, वो तो जीवों का कल्याण करना चाहते थे। ये तो युधिष्ठिर का भाव है। महापुरुष का भाव तो इससे भी बढ़कर होता है। वे तो यह कहते हैं कि हम पहले मुक्त हो जाएं, हमारे अन्य भाई दुख से रोए, ये हम नहीं चाहते। यदि वे महापुरुष मुक्त हो जाएं और प्रचार का काम न करें तो फिर जीवों की अवस्था बिल्कुल कष्टमय हो जाएगी। भगवान अपनी भक्ति का प्रचार तो स्वयं तो करते नहीं, भक्त के द्वारा ही करवाते हैं, और भक्त अपनी मुक्ति करवा करके संसार से हट जाना चाहता है। अब भगवान का काम कौन करेगा? इसलिए दयालु भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए मुक्ति को ठुकरा देते हैं, और वे सत्संग के द्वारा सब मनुष्यों को आनंद का अनुभव कराते हैं। यही सत्संग का सदाव्रत है। भगवान उसको देखते रहते हैं, देख देख कर प्रसन्न होते हैं, और मौका देखकर स्वयं उसमें भाग लेने की इच्छा करते हैं। जैसे काशी जी में शिवजी मुक्ति का सदा व्रत बांटते हैं, वृंदावन में गोपियों की चरण रज में मुक्ति का सदा व्रत सन्निहित है और वह सदा बढ़ता ही रहता है। क्या कोई यह जानकर के भी कहेगा कि पहले हमारा कल्याण हो? अरे कल्याण की इच्छा ही मत करो, सबका कल्याण हो इसके अलावा कोई कल्याण की इच्छा ही मत करो। अपने कल्याण की इच्छा ही मत करो, अपने कल्याण की इच्छा मत करो। सबका कल्याण हो, कैसा उत्तम भाव है। प्रह्लाद के समान भाव होना चाहिए। भगवान के सामने भक्त कहता है, भगवान यदि मुक्ति बुरी चीज है तो मुझे क्यों दो, और यदि उत्तम चीज है तो सबको दो। क्योंकि मेरे से ज्यादा वे ज्यादा दुखी है। मैं तो आपकी शरण में आ गया, आपने मुझे छत्र छाया में रख लिया, मेरे तो दुख है नहीं। तो बेचारे उनकी मुक्ति पहले दे, वो जिसमें आनंद है वो बेचारे दुखी हो रहे हैं। सबको दे दो, बाद मेरे को भी दे दो। महात्मा लोग सबको देकर ही खाते हैं। द्रौपदी सबको भोजन करा करके भोजन करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। वे सब संध्या पूजन करने नदी चले गए। द्रौपदी से पता किया तो उसने कहा, मैं तो भोजन कर चुकी, अब कोई उपाय नहीं है। वनवास में सूर्य भगवान ने पांडवों को एक बटलोई दी थी, इसमें तुम अन्न पकाओ, कितने ही आदमियों को भोजन कराओ कम नहीं होगा। अंत में द्रौपदी के भोजन के बाद ही भोजन समाप्त होगा, लेकिन यहां तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण बाद में दिया, अब भोजन कहां से लाए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैंने तो इसी समस्या से आपको बुलाया है, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाना है, भूख की समस्या से मैंने बुलाया, अरे आपके तो मुझे भूख, अरे मजाक मत कर, हंसी मत कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ये विनोद का समय नहीं है, लाओ लाओ तुम्हारा पात्र लाओ। उसने कहा, मेरा पात्र तो खाली है, देख लो, बगल लाओ मेरे को दो। भगवान ने हाथ में लिया, उस पात्र को खूब गौर से देखा, तो उस पात्र में ऊपर तलवे ऊपर की तरफ एक तरफ किनारे में पत्ता था साग का, मिल गया। भगवान ने उसको लिया और एक ही बात कही, विश्वात्मा तृप्यताम, सारा विश्व तृप्त हो जाए। इतना संकल्प मात्र किया भगवान ने, उस संकल्प के कारण से सारा विश्व तृप्त हो गया। भगवान ने सहदेव को कहा, सहदेव जाओ दुर्वासा ऋषि को बड़े प्रेम से बुला लाओ। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, अब वो बार बार अर्घ्य देवे और लगा हमारा पेट कैसे भर गया, भूखे आए थे, करो क्या बात हो गई, अब जो है उनसे झुका भी नहीं जाए, पेट भर गया उनका। दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे चलो यहां से भगो, ये भगवान के भक्त हैं पांडव लोग, कहीं भोजन न करने पर वो रुष्ट नहीं हो जाए, आज तक तो हमने दुनिया को शाप दिया है, पर इन पांडवों के पास हम चले गए और कहे लाओ वो कहेंगे आओ भोजन करो, और हम कहेंगे हम तो तृप्त हुए हुए हैं, वो पांडव कहेंगे कि पहले आपने क्यों कहा कि हम भोजन करेंगे, इस पर वो कहीं हमको शाप दे देंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल है यहां से, आज तक तो हमने ही शाप दिया, आज कोई हमको भी शाप देने वाला मिल सकता है, भगो यहां से। वहां कोई नहीं मिला, सब भग गए। सहदेव ने आकर भगवान से कहा कि महाराज वहां तो कोई है ही नहीं, किसको बुलाऊं। तो ये भगवान पर विश्वास की बात है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा बुला लाओ तो बुलाने के लिए चले गए। अब सहदेव को ये थोड़ा ही पता था कि साग पत्ता खाने से सबका पेट भर गया, किसी को पता नहीं था, परंतु द्रौपदी का कितना ऊंचा भाव था, उसने भगवान को याद किया, सबको भोजन करा करके भोजन करना ये द्रौपदी का भाव था, तो भगवान उसके वश में रहते थे। गीता में भी कहा है कि सबको भोजन कराने के बाद जो भोजन बचता है वो अमृत होता है, सबको भोजन कराने के बाद अंतिम बचा हुआ अमृत होता है, उस अमृत भोजन को करना चाहिए। हमारे घर में बूढ़ी माताएं सबको भोजन कराने के बाद जो बचता है उसी का ही भोजन करते थे। साधु संत भी भिक्षा के लिए वो ही समय विचार करके जाते थे कि सबने भोजन कर लिया अब भिक्षा के लिए चलो, तो उनको जो भी साग पात रोटी मिलती थी उसमें बड़े संतुष्ट रहते थे और खाने की रुचि समाप्त हो जाती थी, क्योंकि वो अमृतमय भोजन होता था। साधु संत यूं देख लेवे कि भाई इतने बजे सब लोग जिम लेवे, फिर बात जावे भिक्षा लेवण में, और जी घर में कोई भिक्षा लेवण ने चलो गयो भी घर में नहीं जावे, दूसरा घर में जावे, अनजान घर में जावे। भक्त कहता है प्रभु आप मुझे संत बताते हैं और संत का लक्षण आपने तो ये बताया कि जो अमृत का भोजन करता है वो संत होता है और जो पापी पाप का भक्षण वे जो पापी अपने लिए पकाते हैं वो पाप का ही भक्षण करते हैं। तो महाराज यदि मैं मुक्ति लेकर अपना ही स्वार्थ सिद्ध करूंगा तो एक तरह से आपके हिसाब से तो मैं पापी रह गया। और आप कहते हो कि यज्ञ शिष्टा मृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो आप मुझे पापी बतलाते हैं तब तो चाहे मुक्ति दे दीजिए, और जब आप मुझे संत कहते हैं तो सबसे पहले सब तो पहले सबको मुक्ति दे दीजिए और बाद में मुझे मुक्ति दे दीजिए सबको देने के बाद। कि तुम क्या चाहते हो कि महाराज मैं तो पापी न बन करके संत ही बनाइए यही चाहता हूं। क्या संतों के विचार होते हैं, दयालु महात्मा ऐसा ही समझते हैं कि सत्संग से बढ़कर सत्संग ही सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। पर वो कैसे मिले, मालिक की कृपा से, प्रभु की कृपा से, महापुरुषों की दया से। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की दया तो है ही, हम मानते नहीं है ये कमी है, उसकी कृपा दया हरदम मानते रहना चाहिए। अपने पर जितनी दया मानोगे उससे भी अधिक तुम्हारे पर भगवान की दया है। हम लोग केवल कह देते हैं कि हम तो मानते हैं, असल में मानते नहीं है। यदि मान लेते तो फिर कल्याण में देरी क्यों होती है। ऐसा तो कोई आदमी नहीं मिला जिसके लिए संकोच हुआ ही ना हो, उनका कोई दोष बताया जाए तो उनका सुधार बहुत शीघ्र हो जाए एवं प्रसन्नता भी हो जाए। यदि उनकी भूल नहीं है, मेरी भूल है, तो भी अपनी भूल मानने से लाभ ही होता है। कभी कभी हमको कह देते हैं कि इस तरह की बात ऐसे है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर वास्तव में उनका हित मेरे भूल बताने पर सुधार करने में है। लेकिन उनके ध्यान में जो बात आई कह दिया, वो भी ठीक ही है। सब लोग सेवा के लिए युद्ध की तरह तत्पर हो जाए। मैंने कलकत्ता में एक स्त्री को कोड़ियों की सेवा करते देखा। मैं उसका सेवा भाव तो भूल ही नहीं सकता। उसको सब मदर कहते थे, मदर माने मां। वह जाति की अंग्रेज थी एवं कोड़ियों की सेवा पुत्र की तरह करती थी। हमारे लच्छीराम जी मरोदिया की सेवा सराहनीय है, किंतु उस स्त्री के सामने कुछ भी नहीं है। आज भगवान मुझसे पूछे कि जयदयाल तेरी दृष्टि में सेवा करने से मुक्ति किसकी हो, तो सबसे पहले मैं उस स्त्री का ही नाम लूंगा। वंशीधर जी केड़िया ने मुझे वो सेवा दिखाई थी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कितनी अच्छी स्त्री का दर्शन कराया है। कोई सेवा सीखना चाहे तो उस स्त्री से सीखो। सेवा कैसी, जैसे युद्ध में जुझारू बाजा बजे तो तो कायर भी झूमने लगते हैं, अर्थात जिसके मन में सेवा का भाव नहीं होता उसके मन में भी सेवा जाग जाए। हनुमान जी में सेवा भाव था, ब्रह्मचर्य पालन का बल था, स्वामी की आज्ञा पालन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, मर्यादा के पालन में रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है, धर्म के पालन में युधिष्ठिर का नाम लिया जाता है, माता पिता की सेवा में भक्ति में श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है और दुष्टों में कंस का नाम लिया जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, कंस की पदवी स्वप्न में भी न दे, उस पद को तो आप खाली रखो, अपने आनंद में मग्न होकर सेवा करो। सेवा इस भाव से करें, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा में प्रत्यक्ष आनंद होता है। देखो सेवा में एक झगड़ा करना चाहिए, इस झगड़े से कल्याण होता है, बड़ा लाभ होता है। वो झगड़ा समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए कि वो झगड़ा क्या है, कि नहीं ये काम मैं करूंगा, दूसरा कहे नहीं ये काम तो मैं करूंगा, ये अपने मैं करूंगा इसका झगड़ा हो जाना चाहिए। और अपने को सेवा नहीं मिले तो रोना चाहिए। इस रोने में बड़ा आनंद है, मन नहीं माने तो जूझने लग जाए सेवा के लिए, जूझने लग जाए। मेरे तो मन में आती है कि ऐसा काम करें जिसमें प्रत्यक्ष आनंद मिले, वो आनंद दूसरों के दुखियों की सेवा करे, उस सेवा में से भगवान प्रकट होते हैं, जैसे कीर्तन में से भगवान प्रकट होते हैं, हमारे ध्यान में भगवान प्रकट होते हैं, हमारे भाव से भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे दीन दुखियों की सेवा से भगवान प्रकट होते हैं। सच्चे महात्मा मिल जाए तो सेवा करने के लिए लड़ाई होती है। वैसे ही ये दीन दुखी परमात्मा ही तो है, जो कोढ़ी है, दीन है, दुखी है, परमात्मा इस रूप में आए हैं और आपको सेवा का मौका देने के लिए आए हैं। अभी भी यदि आप चूक करते हैं, चूक जाए, भूल जाए, तो उसमें भगवान क्या करे। सेवा करते समय आपको रोना चाहिए कि हे भगवान, मेरे कल्याण के लिए आप देखो कितना कष्ट पा रहे हैं, हे भगवान मुझे सेवा का मौका देने के लिए आप कोढ़ी बनकर आए, आप दुखी बनकर आए, भूखे बनकर मेरे द्वार पर आए। रोना चाहिए और खूब सेवा करनी चाहिए। जैसे संसार में आसक्त पुरुष होता है, उसको विषयों में आनंद मिलता है, ऐसे वैराग्यवान पुरुष को, विरक्त पुरुष को वैराग्य में आनंद मिलता है। मर्म न समझ करके भी यदि सेवा करे, भी सेवा से क्या होता है क्या नहीं होता ये बात नहीं जाने, अपन तो सेवा करनी है ऐसा समझ करके सेवा करे, वीरता से सेवा करे, वीरता से युद्ध करे, वहां दया रस है, वहां वीर रस है, इसमें प्रत्यक्ष शांति मिलती है। वीरता में तो वीर रस है, वहां वीर रस से युद्ध करोगे तो शांति मिलेगी, और दीन दुखी की सेवा करोगे वहां पर दया काम आएगी, तो वहां दया से शांति मिलेगी। वास्तव में तो जो दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है वही तो महात्मा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबके दुख से दुखी होना यानी उनके दुख से परे, उनको दुख से परे करने की चेष्टा करनी चाहिए। भूखे को जिस तरह अन्न मिले ऐसे दुखी आदमी को सेवा मिले, ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाना ये महान धर्म है। ये बात सभी धर्मों में लागू होती है, इस बात को कोई नहीं काट सकता। भक्ति मार्ग से सेवा करो तो सब भगवान के ऐसा समझकर सेवा करो, ज्ञान मार्ग से सेवा करो तो आत्मीय मानकर सेवा करो, सब हमारे अपने हैं। सबको समझानकर सुख पहुंचाओ। भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानम, सब प्राणियों में आत्मा रूप से मैं ही हूं, तो हमारी सेवा अंत में भगवान को ही मिलती है। सबके साथ सम व्यवहार करना चाहिए। सम व्यवहार का अर्थ है आत्मीयता का व्यवहार या भगवान समझ करके व्यवहार। समझ में समता है, क्रिया में समता नहीं है। अपने लिए और दूसरों के लिए एक ही बात है, जैसे हम हमारे शरीर के लिए करते हैं ऐसे दूसरों के लिए करें। त्याग और दया की दृष्टि से भी यही बात है कि दूसरों को अपना अंग समझेगी, हमारा अंग है। जैसे अपने अंग में चोट लगे ऐसे ही दूसरों के चोट लगने पर उतनी पीड़ा होनी चाहिए, इतनी तत्परता और व्याकुलता होनी चाहिए। सारी संपत्ति परमपिता परमात्मा की है और हम सब भाई बहन परमात्मा की संतान है, तो जैसे बाप की संपत्ति पर सब बेटों का अधिकार होता है, ऐसे ही अपने पास जो कुछ है उस पर सबका अधिकार समझे। सबका अधिकार है, सब हमारे भाई हैं इसलिए अधिकार है। उसमें कम अधिक करना चोरी है, डकैती है। पांच भाई है तो पिता की संपत्ति के समान अधिकारी है। सबको भाई समझे, किसी को कम देना अपने पास ज्यादा रखना, इसमें समता कहां है, ये तो विषमता है। लड़ाई झगड़ा विषमता है। दूसरों का हक लेना ये झगड़े की जड़ है। ईश्वर पिता है, हम उसके पुत्र हैं, समान अधिकारी हैं। अपने सुख दुख से दूसरों का सुख दुख समझे। हानि लाभ मान और अपमान में यदि अपने दुख होता है तो दूसरों के हानि लाभ मान और अपमान में दुख होना चाहिए। दूसरी बात है सबको अपनी आत्मा समझे, सबको परमात्मा समझे। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझे। भक्ति की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, सब प्रकार से यही बातें हैं। सब अनर्थों की जड़ है आसक्ति और ममता। इससे स्वार्थ और अहंकार होकर बड़ा भारी अनर्थ बढ़ता ही चला जाता है। बीज में स्वार्थ और ममता है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे डब्बू होता है उसमें हवा भरते हैं, वो पहले बहुत छोटा होता है, हवा भरते वो बड़ा होता ही चला जाता है। ऐसे आसक्ति और ममता है ये बढ़ते ही चले जाते हैं तो अनर्थ होता ही चला जाता है। इनकी तो जड़ ही काटनी चाहिए। अपना कर्म ऐसा हो कि उसमें स्वार्थ न हो, आसक्ति न हो, उसी का नाम निष्काम कर्म है। कोई कह सकता है कि जिस काम से हमको कोई मतलब ही नहीं है हम उस काम को क्यों करें, करें ही क्यों, न हमको कोई लाभ होता है, न कोई हमारा संतोष है, न कोई उसमें हमको फायदा है, हम क्यों करें ही क्यों। तो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। अपने लाभ के लिए तो पशु भी करता है, फिर मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। अरे किसी का भी लाभ है वो अपना ही तो लाभ है, क्यों कोई भी जो है वो हमारा ही तो है, इसलिए दूसरों का लाभ अपना लाभ है और अपना लाभ अपना है ही, क्योंकि अपने ही तो सब समान में रहते हैं, अपने ही तो हैं। ये बात शुरू में समझ में नहीं आए तो अभ्यास करके चालू करो, जबरदस्ती से चालू करो। अपने सुख दुख को जानना तो स्वतः ही हो सकता है। दो पात्र है, एक में तो घी है, दूसरा खाली है, तो एक में से निकालकर दूसरे में डाले तब दोनों में घी हो जाएगा। यही बात अपने और दूसरों के स्वार्थ के लिए सोचना चाहिए। अपने लाभ की तो चिंता ही नहीं करें, दूसरे को कैसे लाभ मिले ये सोचना चाहिए। अपना ख्याल छोड़ दे, दूसरों के लाभ से अपना लाभ अपने आप ही हो जाएगा। यह लक्ष्य लेकर चले तो कौन सी लिया है भाई, बहुत नौका में पानी बढ़े घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। नौका में पानी बढ़ जाए तो उलीच उलीच के बाहर डालते हैं, ऐसे ही घर में धन आ जाए तो उलीच उलीच करके दीन दुखियों में लगाओ। अपनी वृत्ति रूपी नौका है, आराम से पार हो जाएगी। ये बहुत बड़ा बारी भजन है। रुपया कैसे बढ़े, रुपयों का भजन है, इससे तो पतन होगा। और भगवान कैसे मिले, इससे भक्ति बढ़ेगी। संसार का हित कैसे हो, ये कर्मयोग है। अब आपको जो अच्छा लगे सो आप कर सकते हो। एक ही उपाय है, अपने स्वार्थ की बात उठते ही तत्काल काट देवे और दूसरे की हित की बात उठे तो उसका तत्काल पोषण कर देवे। और इससे आगे बात बताई जाती है, दूसरे का हित है इससे बढ़कर अपना कोई लाभ नहीं है। हमें त्याग सीखना चाहिए। सिद्धांत बना ले कि विश्व में स्वार्थ बुद्धि से जो काम हो रहा है उसके उल्टा चलना है, अपने को तो परमार्थ में चलना है। निष्काम भाव से, परमार्थ भाव से सोचे तो यही सुख है। स्त्रियां ध्यान दीजिए भाई, स्त्रियां स्वार्थ बुद्धि से इकट्ठा किया हुआ धन बेटी को घर वालों से छिपा कर देती है, ये गलत मार्ग है। ऐसा करने से परिवार में प्रेम टूटता है। क्यों? क्योंकि बहू समझती है कि सासू जी घर को अपनी बेटी को देकर मेरा घर खिला रही है, तो सासू बहू में कैसे प्रेम रहेगा। सासू देखती है कि मैं हूं जितने देती हूं, मेरे बात कोई नहीं देगा, तो उसका रास्ता आगे के लिए बंद कर दिया। यदि देना हो तो आपने बहू के द्वारा दिलवाना चाहिए, ननद को दिलवाना हो तो अपने बहू के द्वारा, अपनी बेटी को, सासू अपनी बेटी को देवे तो अपनी बहू से दिलवाए, छिपावे नहीं। घरवालों से छिपाकर देती गलत मार्ग है। अपना ये लक्ष्य निर्धारित करके चलो। यदि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और मृत्यु हो गई तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। हमने लक्ष्य बना लिया लेकिन मृत्यु आ गई, हम क्या करें? वो मृत्यु भी आगे लाभ देने वाली है। उत्तम कुल में जन्म होगा, साधन का नाश नहीं होगा, जितना साधन किया है वो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन जो धन कमा करके मरते हैं उनका धन यही रह जाता है, अगले जन्म में मिले जरूरी नहीं है। अभी प्रत्यक्ष में भले ही सुख शांति न मिले, पर अपने को साधन भजन सुख शांति के पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। साधन भजन करने का ही पूरा लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे धन कमाने वाला होता है, एक ही लगन में लगा रहता है कि धन कैसे इकट्ठा करे, उसका परिणाम नहीं देखता कि ज्यादा धन हो जाएगा तो घर में कलह होगा, लड़ाई होगी, ममता बढ़ेगी, मेरी आसक्ति बढ़ेगी, वो कुछ नहीं देखता। लगन धुन है, पैसा इकट्ठा करते हैं। महाराज जी ने पूछा एक बहुत बड़े धनी आदमी से कि भाई तुम्हारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी तक बादाम का सीरा खाओ तो भी तुम्हारे खूटने वाला नहीं है, तो फिर तुम रात दिन क्यों धन में लगे हो? तो उसने ईमानदारी से उत्तर दिया कि महाराज ऐसा हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि हम क्यों कमा रहे हैं। ये धन झूठा है, मरने पर साथ नहीं जाएगा। अपना सच्चा धन कमाते जाओ, परिणाम पर ध्यान मत दो। धन कमाने वालों से ये चाल सीख लो, अपना कमाया हुआ धन साथ जाएगा। हम अपने लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई निरादर करे, कोई कुछ कहे, सहते चले जाओ। धन कमाने वाला कितना सहन करता है, दुकान पर बैठा है, लोग कहते हैं ये ठग है, बहुत चोरी करते हैं, लाते हैं उसे 50 रुपए में बेचता 100 रुपए में, कितनी बात है, परंतु वो धन के पीछे पड़ा परवाह नहीं करता है। ऐसे ही परवाह नहीं करनी चाहिए। मुक्ति की भी इच्छा मत करो, मुक्ति की तरफ चलो लेकिन इच्छा मत करो, यही सच्ची निष्कामता है। यदि समझ में आ जाए तो बड़ा जोरदार साधन होगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नहीं आए समझ में आए तो त्याग पत्र देकर बैठ जाए। त्याग पत्र देने का अर्थ कि हमें तो भाई लक्ष्य की तरफ चलना है, बस क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं सोचना है। आलस्य फंसाता है और प्रमाद और आलस्य नरक के दरवाजे हैं, बहुत खराब है। प्रमाद आलस्य को छोड़कर साधन काल में आसक्ति और फल की इच्छा का अभाव करे और अपने लक्ष्य की तरफ जागरूक रहे। राम सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर है। आदमी सत्संग करे तो उसको समझना चाहिए कि हमारा मुक्ति से भी ऊंचा काम हो गया। भगवान ने कहा गीता में कि जो मेरे में चित्त लगाते हैं, जिन्होंने अपने प्राण मेरे में अर्पित कर दिए हैं, जो मेरे प्रभाव को आपस में बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और उसमें वे बड़े आनंदित रहते हैं, ऐसे मुझ वासुदेव में रमण करने वाले लोग बहुत प्रिय लगते हैं और उनको मैं ज्ञान देता हूं। तो भगवान में मन लगाना अर्थात भगवान का ध्यान करना और भगवान की बातें करना या भगवान का स्मरण करना, ये ध्यान से भी बढ़कर है। क्योंकि भगवान का ध्यान भजन के बिना नहीं होता है, इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम लेने की बहुत महिमा है। भगवान खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई, शेष महेश गणेश इन्होंने भी भगवान के नाम के विषय में जो कहा है वो सब थोड़ा ही कहा है। भगवान के नाम की महिमा पूर्ण रूप से कोई नहीं गा सकता। अपने अपने बुद्धि के अनुसार गाते हैं, पर वास्तव में भगवान के नाम की स्तुति के बदले एक प्रकार से निंदा ही होती है। ये बात समझ में नहीं आई? भगवान के नाम की महिमा करते हैं तो भगवान के नाम की निंदा होती है। निंदा कैसे होती है? वो स्तुति करने वाला व्यक्ति समझता है कि इतनी महिमा है, इतनी नहीं है, अनंत महिमा है। वो देखता है कि मैं खूब स्तुति करता हूं, वो थोड़ी स्तुति है, यही एक प्रकार से निंदा है। एक बात याद आ गई, शास्त्र की तो नहीं है पर संसार की एक कल्पना ही है, एक दृष्टांत के लिए अच्छी बात है। एक राजकुमार था, घोड़े पर बैठकर जा रहा था। वो बड़ा सुंदर रूप वाला था, उसने बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहन रखे थे। उसके पैरों में स्वर्ण के कड़े थे। राजकुमार धीरे धीरे जा रहा था। मार्ग में दो मजदूरन मिली, उनमें से एक ने कहा कि इसने पैरों में सोने के कड़े पहन रखे हैं। दूसरी मजदूरन ने कहा कि भाई इनकी क्या बात है, राजा के कुंवर हैं, बड़े आदमी हैं, ये चाहे तो गुड़ के भी बनवा सकते हैं, सोने के कड़े पहन रखे, ये चाहे तो गुड़ के भी बनवा सकते हैं। अच्छा गुड़, अच्छा मैंने देखो कोई सुनारो बनते लोग गुड़। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जैसे सोने के कड़े है ना, मैंने देखो कोई गुड़ रो, कोई गुड़ो खावा जेको नहीं, सोनारो कहता गुड़ को बनते लोग गुड़ को, आ बात नहीं भाई, ऐसा वे तो गुड़ रो भी बना सके, गुड़ कहता कि तो बड़ो लागे। बस ठीक यही बात है वे अपनी समझ में राजकुमार की बड़ाई तो कर रही हैं, पर बड़ाई में निंदा ही है। किंतु वे करें क्या, उनकी समझ में गुड़ बहुत बड़ी चीज है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। उनको ये पता ही नहीं है कि एक रत्ती भर सोने में कितना गुड़ आ सकता है। यही हाल हम लोगों का है। हम लोग उस परमात्मा के नाम की स्तुति गाते हैं, पर वह सोने के कड़े से गुड़ की समता करने की तरह निंदा करते हैं। तथापि भगवान समझते हैं कि ये बिचारे क्या करें, इनकी बुद्धि इतनी है, योग्यता ही उतनी है, इसीलिए जितनी बुद्धि है उतनी तो बात कहते हैं। भगवान तो इसमें भी बारंबार प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों की तोतली बात सुनकर के माता पिता आनंदित होते हैं। परमात्मा भी हमारी टूटी फूटी बात सुनकर के, तोतली बात सुनकर के प्रसन्न नहीं होते हैं, उस स्तुति से प्रसन्न होते हैं। नाम जप और सत्संग की बात है। सत्संग में प्रीति अधिक है, वो होनी चाहिए। यदि सत्संग छोड़ देंगे तो नाम जप में विश्वास घट जाएगा और फिर नाम जप कम होता चला जाएगा। इसलिए सत्संग करनी चाहिए। सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर है। जो प्रभु के दया के रहस्य प्रभाव को जानता है वही दया का अनुभव करता है। वही व्यक्ति सत्संग को मुक्ति से बढ़कर मानता है। मुक्ति से बढ़कर सत्संग कैसे है, ये विचारने की बात है। सत्संग माने महान पुरुषों का संग, ये मामूली चीज नहीं है, बड़े महत्व की चीज है। महापुरुषों का महत्व क्या बताया जाए। मुक्ति तो उनके चरणों में लौटती रहती है। संसार में एक तो ऐसे पुरुष हैं जो रोजगार करके अपना पेट भरते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो भिक्षा के ऊपर ही अवलंबित हैं, तीसरे ऐसे हैं जो दूसरों को खिलाकर फिर खाते हैं, सदाव्रत बांटते हैं। इन तीनों में ऊंचा दर्जा किसको दिया जाए। संसार को खिलाकर खाने वाले को तो ही दिया जाएगा। यहां पर सबको खिलाकर भोजन करने वाला वह है जो सबका कल्याण चाहता है और भगवान के देने पर भी मुक्ति ग्रहण नहीं करता, और यदि करता है तो सबके कल्याण हो जाने के बाद ही करता है। जब ऐसे भक्त को भगवान मुक्ति देना चाहते हैं तो वो कहता है, भगवान मैं तो सत्संग चाहता हूं, दिन रात आपके गुण प्रेम तत्व और रहस्य की बात सुनने को मिले, उसी में ही मस्त रहूं, यही चाहता हूं। मेरी इस कामना को चाहे आप सकाम समझो, चाहे मर्जी आए जो कुछ और समझो, यदि आपको मेरा भार है तो जिस सत्संग से सारे जीव का कल्याण हो जाए ऐसा सत्संग दे दो, और सारे विश्व के कल्याण के बाद मैं तो हूं ही,